जय रामचंद्र की जय। मोर मोटवंशी वाले की जय।
आज रात्रि के वहाँ मेरी अवश्य ही मृत्यु होगी। जो 22 ऋषि ने मुझको जो श्राप दिया था उसकी मेरे स्मृति हो गई। उन्होंने यही श्राप दिया था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो हमारे जो चार लड़के हैं ना, तो उस वक्त में नहीं थे, बोला कि तुम्हारे पुत्रों के वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। सो आज राम लक्ष्मण तो बन में गए हैं और भरत शत्रुघ्न ननिहाल के माँ है, तो यही हमारी मृत्यु का दिन है। कौशल्या ने पूछा, स्वामी वही ऋषि कौन हुआ और उसने आपको श्राप क्यों दिया, किस हेतु से दिया, क्या श्राप दिया, क्या कारण हुआ, ये सारी बात आप मुझको बतलाओ। जब इस प्रकार से कौशल्या ने पूछा तो दशरथ जी फिर कहने लगे कि हे कौशल्य, जो मेरी युवावस्था थी उस वक्त के मां प्रजा की रक्षा के लिए रात्रि के समय में मैं एक सिपाही की माफक गश्त लगाया करता था। जंगली जो हिंसक जानवर है उनको रात्रि के समय में मारा करता था। रात्रि के समय के बीच के मां जो जंगली जानवर शहर के जानवरों को यानी शहर के पशुओं को जो मार डालते हैं, मनुष्यों को मार डालते हैं, वे अपने रात्रि के समय आया करते थे। सरजू के ऊपर जल पीने आते थे और मैं रात्रि के समय छिप करके फिर उनको उस समय में मार दिया करता था। प्रजा की रक्षा के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए इस प्रकार से थी मैं गश्त लगाया करता था। एक दिन की बात है, अंधेरी रात ही आधी रात का समय था, मैं एक जगह छिप करके बैठा था और मैं शब्द वेदी बाणों को जानता था, तो रात्रि के समय मेरे कानों में आवाज आई कि मानो कोई हाथी जल पी रहा है। किंतु बात दूसरी थी, बात यह थी कि श्रवण कुमार जो 22 ऋषि का लड़का है वो घड़े के मां जल भर रहा था। घड़े में जल भरने का शब्द और हाथी जब जल पीता है तो जब जल सूंघ में जाता है तो वो शब्द दोनों एक से ही होते हैं, तो मैंने ये सोचा कि कोई जंगली हाथी जल पी रहा है। और मैं जंगली हाथियों को और सिंह और बाघों को और जंगली सूरों को मारा करता था। ये समझ करके मैंने उस शब्द को लक्ष्य बना लिया और शब्द वेदी बाण को मैं जानता ही था। जो ही वो बाण में मारा वो बाण श्रवण की छाती के मार करके लगा, जिसके लगने से थी और श्रवण एकदम व्याकुल हो गया और श्रवण ने कहा, अरे मुझ निरपराधी को किसने मार डाला, हम तो किसी का अपराध करते ही नहीं, हम तो बन के कंदमूल फल खा करके अपना जीवन बिताते हैं, हम लोग बन में रह करके तपस्या करते हैं और अपना समझो कि जीवन बिताते हैं, और हमारे को मारने पर मारने वाले को क्या मिलेगा, उसका कौन सा कार्य सिद्ध होगा हमको मारने से। इस प्रकार से वो विलाप करने लगा, तो दशरथ जी कहते हैं कि उसकी आवाज को सुनकर के मैं उसके पास आया और कांपने लगा कि आज मुझसे बड़ी भारी हत्या हो गई। मैंने सोचा कि ये ऋषि कुमार है, ब्राह्मण का लड़का है। राजा दशरथ कहते हैं मुझको व्याकुल और घबराया हुआ देख करके कर उस ऋषि कुमार शरण ने मुझको आश्वासन दिया, ठाठस बनाया कि राजन आप चिंता न करिए, आप घबराइए मत, आपको वनमत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण का लड़का नहीं हूँ, मैं एक वैसे तपस्वी का लड़का हूँ, मेरे पिता को वैश्य ऋषि कहते हैं, तो आप जो कोई बात की चिंता नहीं करें, मेरे मरने का भी मुझको बिल्कुल दुख नहीं है, दुख मेरे को है मेरे माता पिता का, मेरे माता पिता जो हैं वे बूढ़े हैं, अंधे हैं और प्यासे हैं। रात्रि के समय में मैं माता पिता के लिए जल लेने के वास्ते यहाँ आया था। तो आप एक काम करिए, ये जो पगडंडी है ये मेरे पिता के आश्रम को जाती है, तो आगे मेरे माता पिता आपको मिलेंगे, उनको जाकर के सच्ची सच्ची बात कह देना, जिस प्रकार से थी मेरी दशा हुई, आप सच्ची बात कह दोगे तो मेरा पिता आपको क्षमा कर देंगे, और कोई बात छिपाना नहीं, मेरा पिता बड़ा तपस्वी है, उनको जाकर के आप जल पिलाना और यहाँ की जो परिस्थिति कह देना, और आप कोई बात से घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, मेरे जो बूढ़े माता पिता है उनके लिए मुझको चिंता है, ये कहकर के उन्होंने दूसरी बात ये कही कि बाण से मेरे बड़ी पीड़ा हो रही है, तो राजन इस बाण को आप निकाल लो। ये कहने के बाद राजा कहते हैं कि मैं उसके बाण को जो निकाला तो उसकी मृत्यु हो गई, वो एक प्रकार से बेहोश होकर के उसका जो शरीर एक प्रकार से गिर पड़ा और उसके प्राण फकीर उड़ गए। सरजू के किनारे पर उसका सब जो शरीर गिर पड़ा, कछु हिंसा सरजू के जल की धारा में और कछु अपने उस तट के ऊपर भूमि के ऊपर। मैं दुखी किस देश से थी, एक उसे बहुत ही व्याकुल होकर के उसके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार उसके पिता के आश्रम पर पहुंचा। उसके पिता ने ये बात सोची कि मेरा लड़का श्रवण जल लेकर के आया है, मैं मौन हो गया क्योंकि मैं बोलूंगा तो मेरी बोली को पहचान देंगे, मैं बोला नहीं। तो उस समय के बीच के वहाँ श्रवण का पिता कहता है, बेटा आज तुम बोलता क्यों नहीं, तू तो बड़ा सुपाचल लड़का है, तू तो कभी रूठता ही नहीं, क्या आज तू माता पिता पर रूठ गया? बेटा जब तू रूठ जाएगा तो हम तो मर जाएंगे, हमारा तो तेरा ही आधार है, हमारी कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा करनी चाहिए, अरे तू तो एक प्रकार से बड़ा सुपाचल लड़का है, आज तेरे किसकी संगत हो गई, किसका तुम्हारे पर ये खराब असर आ गया, ये तो कभी आशा ही नहीं थी, तू रूठ जाएगा, तेरा बेटा बेटा तेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है, ये बात तुम्हारे में कहां से आ गई? जब इस प्रकार से थी श्रवण का पिता बोलने लगा, तब राजा दशरथ कहते हैं कि फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि महाराज मैं आपका लड़का श्रवण नहीं हूँ, मैं इस देश का राजा दशरथ हूँ, मैं आपको जल पिलाने के वास्ते आया हूँ, आप जल पीजिए। तो श्रवण के पिता ने कहा कि राजन आप राजा होकर के मुझको जल पिलाने के वास्ते आए, जल लाने के लिए मेरा बेटा श्रवण गया है, वही आकर हमारे को जल पिलाएगा, आप जल पिलाने के लिए कैसे आए, क्या हमारे लड़के के ऊपर कोई विपत्त तो नहीं घट गई जो कि तुम जल पिलाने के लिए आए हो? राजा ने कहा कि आप जल पी लो, उसके बाद में बात आपको बताऊंगा। श्रवण के पिता ने कहा कि हम जल नहीं पी रहे हैं जब तक तुम हमको नहीं बतलाओगे, मेरा लड़का जल लाने के लिए गया था और वो नहीं आकर के जब तुम जल लेकर के आए हो तो अनुमान होता है कि हमारे लड़के पर कोई आपत्ति आई, तो उसको तुम बतलाओ कि हमारा लड़का बड़ा जीवित तो है ना, हमारे लड़के के ऊपर क्या आपत्ति आ गई ये तुम हमारे को बतलाओ, अभी हम एक बतलाओ पहले जल नहीं पीने। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं दुखी चिरदे से एकदम व्याकुल हो गया और मेरा भीग जाता रहा, मैं रोता हुआ कहने लगा कि महाराज मैं रात्रि के समय के बीच के वहाँ सबदेव जी मां को अपना चढ़ा करता हूँ, जंगली जो हिंसक पशु है उनको मैं मारा करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, आपका लड़का जल भर रहा था, मैंने उस शब्द को सुनकर ये सुन लिया कि कोई जंगली हाथी जल पी रहा है, ऐसा समझ करके और मैंने उस शब्द को लक्ष्य बना करके जो वो बाण छोड़ा, वो बाण आपके लड़के श्रवण की छाती में जाकर के लग महाराज ये मेरा बड़ा अपराध हुआ, उसके लगने से ही आपका लड़का मर गया। उस लड़के ने ये स्थान मुझको बताया, ये बड़ा भारी अपराध मुझसे अजान में हो गया, मैंने जान करके कि ये पाप नहीं किया, इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा करो। श्रवण के पिता ने कहा, राजन तूने आकर के सच्ची बात कह दी और ये अपराध तुम्हारे से अज्ञात से हो गया, नहीं तो तुम्हारे शरीर के अवि 100 टुकड़े हो जाते। अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब जहाँ हमारे लड़के का शरीर है वहाँ हमको तुम ले चलो। तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे कौशल्य, मैं एक प्रकार से थर थर कांपने लगा और उन दोनों को श्रवण के माता पिता की लाठी पकड़ करके वहाँ ले आया जहाँ श्रवण की लाश पड़ी थी। अब उसके माता पिता उस लाश को गोद में लेकर के और रोने लगे, जिसको सुन करके धैर्यवान का भी धीरज जाता रहता है, मेरा धीरज जाता रहा। उसके पिता ने कहा कि बेटा श्रवण, अरे जाने के समय में तू मिलकर के नहीं गए, बूढ़े अंधे माता पिता को छोड़कर के सदा के वास्ते चल बसा, अब हम कैसे जीवेंगे। बेटा तू हमारे को सरजू का ठंडा जल पिलाया करता था, अब हमारे को जल कौन पिलावेगा, बनने से कंद मूल खुल जाकर के तू दिया करता था जिससे हमारी जीविका चलती थी, अब हमारे को कौन जाकर के कंद मूल खिलावेगा। बेटा अपने आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए कि माता पिता की सेवा में कहीं माता पिता की सेवा में कहीं कमी न आ जा। हम तीर्थ के वास्ते विचार करते थे तो तुम कावड़ में बैठा करके के हमारे को तीर्थ कराया करता था, जब प्रातः काल होता था तो तू सोच स्नान कर करके के और हमारे को पुराणों की कथा सुनाता था और वेद की कथा सुनाता था, अब हमारे को कौन सुना लेगा। बेटा अचानक तू एक प्रकार से चला गया, हम लोगों को धोखा दे करके के अब हम कैसे जीवेंगे। दशरथ जी कहते हैं कि उनका विलाप सुनकर के और मेरा भीज जाता रहा, मैं हाथ धोकर उनसे प्रार्थना की कि आप शोक मत करो, आप धैर्य रखो और मैं आपकी खुद सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि हे राजा दशरथ, जिस प्रकार की सेवा श्रवण ने हमारी की ऐसी सेवा आज तक किसी ने भी नहीं की और भविष्य में भी साहित्य को ऐसी सेवा करेगा। राजन जो होनहार था हो गया, अब तुम चिता बना दो। तो मैंने श्रवण के लिए वहाँ चिता बना दी, किंतु उसके माता पिता श्रवण के माता पिता उस चिता पर जीते हुए खुद ही चढ़ गए और श्रवण को अपनी गोद में लेकर के और उसके आग लगा करके के और जीते जी अपने सुबह जल मरे। प्राण जाने के समय जलने के समय उन्होंने ये साप दिया कि राजा दशरथ हम पुत्र के वियोग में मर रहे, इसलिए तुम्हारी भी मृत्यु अपने पुत्रों के वियोग में होगी। ये सुनकर के मैं उस श्राप को वरदान समझ लिया कि ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। एक तो मैं अपराधी था, दूसरे मेरे लिए समझो कि ये कहा कि तुम्हारी मृत्यु अपने पुत्रों के वियोग में होगी। उस वक्त में मेरा कोई पुत्र था ही नहीं, मैंने ये सोचा इनकी कृपा से हमारे यदि पुत्र होंगे तो चाहे उनके वियोग में हमारे प्राण क्यों नहीं जाएं, हमारे पुत्र तो बने होंगे। उसके बाद के बीच के मन हमारे चार लड़के हुए, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। आज भरत और शत्रुघ्न तो ननिहार के मन है और राम और लक्ष्मण सीता के सिर वन को चले गए। इसलिए हे कौशल्य, हे सुमित्रे, ये आज का दिन मेरी मृत्यु का दिन है। आज रात में अवश्य मेरी मृत्यु होगी, उसे ऋषि के वचन उसको याद ऐसो आ गई। इस प्रकार से आपने कह करके हा राम हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार से विलाप करते हुए राजा दशरथ को एक प्रकार से जान नहीं पड़े। कौशल जो है सुमित्रा है उनको निद्रा आ गई किंतु राजा को निद्रा नहीं आई। इस प्रकार से थी राजा विलाप करते करते ही अपने चल बसे, उनके प्राण प्रचुर निकल गए और वे सुख को चले गए। प्रातः काल होने पर जब ये मालूम हुआ कि राजा की मृत्यु आज रात में हो गई तो फिर जिस प्रकार से थी काम होना चाहिए होने लगा। वशिष्ठ जी ने दूत भेजे और बोला कि तुम तुरंत जाकर के और भरत और शत्रुघ्न को ले आओ और कहो कि गुरु की आज्ञा है, बहुत जरूरी काम है, एक उसे तुरंत अगर चले आओ। तो जाकर के दूत ने यही बात कही। कहने के साथ उन्होंने सोचा कि पिताजी जब आज्ञा देते हैं तो गुरु जी के मार्गपति देते हैं, एक तो गुरु जी और एक मंत्री भी हैं, तो इस वास्ते गुरु जी की आज्ञा है तो खुद भी आज्ञा गुरु जी की हो तो उनका पालन करते थे और वह समझा कि पिताजी की भी आज्ञा है। ये सोच करके दोनों भाई तुरंत ही से आए, आकर के देखते हैं कि अयोध्या की दशा बेदशा, अयोध्या मुरझाई हुई है और कोई भी उसे नेत्र मिला करके बात नहीं करते हैं। जैसे पारे पड़ने पर खेती मुरझा जाती है, ये दशा उस समय की वहाँ अयोध्या की देखी। जब आए तो माता के भवन में गए, केकई के भवन में, केकई के भवन में इसलिए गए, वो समझते थे कि पिताजी आजकल केकई के भवन में रहते। पिताजी उनको नमस्कार करने के लिए और हम क्यों बुलाए गए इस बात के जानने के लिए वहाँ गए, तो वहाँ पिताजी तो थे नहीं, माता केकई थी। केकई प्रणाम से उठ कर के आपने प्रस्तुत हुई और वे उनके चरणों में गिर गए। माता ने उनको उठा करके अपने हृदय के लगा दिया, हृदय के लगा लिया और पूछा कि हमारे पीर के मन सब खुश है ना। उन्होंने कहा बहुत खुश है। फिर भरत जी ने पूछा कि पिताजी कहाँ गए। माँ ने कहा कि बेटा उत्तम कर्म करने वाले जिस लोगों को जाते हैं तेरे पिता उसी गति को गए, उन्हीं स्वर्ग को गए। ये सुनकर के भरत जी विलाप करने लगे। भरत जी विलाप करने लगे कि पिताजी पिताजी सदा के वास्ते चल बसे, पिताजी स्वर्ग को चले गए और जाने के समय के बीच के वहाँ मुझको हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम को बिना सूखे ही चले गए, ये विशेष दुख की बात है। पिताजी समझो कि राम को सौंप करके जाते, हमारे ज्येष्ठ भ्राता को सौंप करके जाते तो हमारे लिए बहुत ही मंगल की बात है। खैर इस प्रकार से व्याकुल हो गए। फिर पूछा कि माँ पिताजी के मरने में क्या कारण हुआ, पिताजी कैसे मर गए। तो माँ ने अपना हृदय कठोर बना कर रखे और केकई बोली कि बेटा जब तुम यहाँ नहीं था ना तो तुम्हारे पछाड़ी से तेरा जो पिता है राम को राजतिलक करने का विचार किया, तो एक प्रकार से इस विषय में मंथरा बहुत ही सहायक बनी। मंथरा ने आगे के कहा कि उसने चेतावनी दी कि तू गाफिल हो रही है और राम को राजतिलक होने को जा रहा है, जब राजतिलक हो जाएगा तो तू कौशल्या की दासी होकर के रहे। तो उसने हमारे को ये शिक्षा दी कि दो वरदान तुम्हारा दृढ़ रूप से है, तुम उसके बदले में ये मांगो कि एक वरदान तो तुम ये मांग लो कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, दूसरा ये मांग लो कि 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी। तो मैंने ऐसा ही किया, ऐसा करने पर तुम्हारे पिता ने समझो कि एक प्रकार से बहुत कुछ मुझको समझाया, किंतु मैं कम मानने वाली थी। उसके बाद में धर्म के धारण करने वाले श्री राम वन को चले गए, लक्ष्मण और सीता प्रेम दिखलाते हुए उनके साथ में चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारा जो पिता जो है दशरथ जी उनके वियोग के बीच में हा राम हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार से मिलाप करते उन्होंने प्राणों का त्याग कर ये जो सुना तब एकदम व्याकुल होकर के भरजी गिर पड़े जैसे नदी किनारे का वृक्ष तट गिर जाने से गिर पड़ता है। इसी प्रकार से भरजी गिर पड़े मूर्छित हो गए पिता के मरण को भूल गए और राम के बन की बात सुन करके उस समय के बीच में थोड़ी देर के बाद में होश आया तो वाल्मीकि में बतला है कि माँ को बहुत खोटी खरी करने लगे कि जिस समय मैं पैदा हुआ उस समय में मुझको बीज क्यों नहीं दे दिया जो तुम्हारी ये इच्छा थी तो आज मुझको ये कष्ट नहीं सहना पड़ता। बतला तो सही कौन है जैसी तेरी माँ थी ऐसी तुम है तू यहाँ से मुंह काला करके चली जा मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। राम ने तेरा क्या बिगाड़ किया जिसको तू वन में निकाल दिया और राम को वन में निकाल करके तू जो सुख चाहती है सो तुम्हारा मनोरसपन होने का नहीं मैं कभी राज नहीं करूंगा। धिक्कार है मुझको कि राम विरोधी प्राणी से मेरी उत्पत्ति हुई आज एक प्रकार से मैं अपने को धिक्कार देता हूँ और तुम जो है एक प्रकार से थी ऐसा काम किया कि राम ने तेरा कोई अनिष्ट नहीं किया राम किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं और उसको तुम वन में निकाल करके और सुख भोगना चाहती है सो तुम्हारी तुम्हारा मनोरसपन नहीं होगा। इतने के वहां वो मंत्र आ गई उसको देखकर के संतरी ने कहा कि महाराज इस अमृत की मूल या मंत्र आए मंत्रा को देख करके और लक्ष्मण जी दौड़े उसकी चोटी पकड़ के जिसको हम लोग चट्टा कहते हैं चट्टा पकड़ के और घिसने लगे जमीन पर मारने लगे लातों से मारने लगे उसके दांत टूट गए और वो चिल्लाने लगी। उसके साथ में और बहुत सी सखियां थी वे एक प्रकार से उसको छोड़ करके के सब भाग गई। उसमें मैं वो पुकारने लगी कि हे केकई मैं जो तुम्हारा उपकार किया उसका ये हमारे को पुरस्कार मिलता है ये मुझको मार रहा है और तू मेरी सहायता नहीं करती। इतने ही मुस्लिम जो केकई दौड़ करके लक्ष्मण के मने शत्रुघ्न के पास गई। जब उसके पास गई तो शत्रुघ्न ने दूर से धमकाया कि आ तेरी भी मैं यही दशा करूंगा मुद्रा दे करके और केकई वहां से भाग गई। उस समय के बीच के माँ संजो की भरजी ने कहा कि शत्रुघ्न इसे को तुम ज्ञान से नहीं मार जब ज्ञान से मार डालोगे तो स्त्री अत्यारा मान करके भगवान तेरा त्याग कर देंगे राम के द्वारा तुम सदा के वास्ते त्यागे जाओगे। यह सुना तो उसने उसको अधमरी छोड़ दिया। उसने सोचा कि बात ठीक है और फिर दोनों भाई कौशल्या से मिलने के लिए वहाँ कौशल्या के भवन के बीच में वहाँ जाने लगे। और भी बहुत सी बात भरजी ने माता केकई को कही थी ये कहा कि हे केकई तू जो अभी जी रही है वो भगवान राम की कृपा से जी रही कैसे कि मैं ये समझता हूँ कि मैं तेरे को जान से मार डालूंगा तो राम मात्र प्यारा समझ के मेरा त्याग कर देंगे इस भय से मैं तेरे को नहीं मारता हूँ नहीं तो मैं तुम्हारा अभी मस्तक ऐसे तलवार से काट डालता मैंने ऐसा निष्कर्म किया है कि तेरा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं तो प्रकार से कैसे बोली कि राम को वन में भेज क्या उस समय में तुम्हारी जीभ कट करके नहीं गिर गई तुम्हारे जो ऐसे जीभ में कीड़ा नहीं पड़ गए अनेक प्रकार की ये सब बातें कही। उसके बाद भी समझो कि माता कौशल्या के भवन में जाने के लिए वहां विदा हो पर कौशल्या ने ये बात सुनी कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आए हैं और वो केकई के भवन हैं तो ये सोचकर के कौशल्या भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए वहां से विदा हो गया अपने महल से वो महल से उतर के केकई के भवन को जा रही थी उसको इतना बर्दाश्त करा कि उसकी प्रतीक्षा करे रस्ते में भेंट हो गई भक्त और शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने उनको उठा करके हृदय के लगाया और गोद में बैठा करके कहा कि बेटा तेरी माँ की करनी तो तेने सुनी होगी ना बोला कि माँ सब मैं सुन चुका हूँ। ये बात कहकर के मेरे हृदय को मत जरा। माँ ने कहा कि बेटा एक प्रकार से थी, जब तेरा ज्येष्ठ भ्राता राम वन को गया तो ये कहा गया कि माँ मेरे से भी बढ़ करके भरत तुम्हारी सेवा करेगा। सो आज मैं ये प्रत्यक्ष देख रही हूँ। भरत जी कहते हैं कि माता कौशल्या से कि राम के वन में जाने के माँ मैं शब्द खा करके कहता हूँ कि यदि मेरी सम्मति हो तो वशिष्ठ और अर्जुन जी की हत्या करने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे। राम के वन में जाने में यदि मेरी सम्मति हो तो गांव के झुंड के गांव के बाड़े के आग लगाने से जो पाप हो वो मुझको हो। राम को वन में जाने के बीच के माँ यदि मेरी सम्मति हो तो भूत प्रेता जी की पूजा करने से जो पाप हो वो मुझको हो। अनेक प्रकार की शब्द खाई। ये सुनकर के माता कौशल्या बोली कि बेटा राम के वन में जाएंगे जो तेरे ऊपर ऐसा कोई दोष लगावेगा कि राम के वन में जाने के विषय में भक्त की भी सम्मति है तो तने जो शब्द खाई है उसका उस शब्द के अनुसार वही पाप का भागी होगा जो तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से थी आपने दोष लगावेगा। बेटा मैं जानती हूँ कि तेरा इसमें कोई भी अपराध नहीं है, ये होनहार थी, न तो इसमें केकई का दोष है और न मंत्रा का, मेरे भाग्य का दोष है, मेरे तकदीर का दोष है, मैं किसको दोष लगाऊं? धन है दशरथ जी को कि जिन्होंने अपने प्राण साथ में भेज दिए, मैंने उसके साथ में उनके विरह की व्याकुलता के मैं मर गई, और धन्य है सीता और लक्ष्मण को जिन्होंने शरीर से साथ दिया, मैंने तो शरीर से साथ दिया और मैंने प्राण भी उसके साथ में दे दे, मेरा हृदय जो है सो बदलता पड़ा हुआ, इसलिए मैं मेरे प्राण गए और मैंने साथ दिए। धन्य राजा दशरथ को जो आपने उनके मरने के बाद में पल्लव को चले, धन सीता और लक्ष्मण को जो उन्होंने साथ में जाकर के उनकी सेवा कर रही। बेटा मैं क्या कहूँ, मैं जो बात होनी थी सो हो गई। भरत जी रोने लगे, माँ रोने लगी, भरत जी की आंसू को देख करके और माता ने अपने अंचल से थी उनके आंसू से पूछ दी और कहा कि बेटा अब धीरज रखो, जो होने वाली बात हो। के बाद में गुरु जी की आज्ञा को पाकर के माताओं की आज्ञा को पाकर के भरत जी ने वे सब काम किए जो मतलब के करने होते हैं, उनकी दाह क्रिया की, फिर तिलांजलि दी, उसके बाद के बीच के वहाँ सिंधु की पिंड दिए और इस प्रकार से थी दशकात्र जो है नारायण बलि सपिंडिक शराब ग्रामीण भोजन जो कुछ विधि के साथ करना होता है सब कुछ किए और सब कुछ करने के बाद के बीच के वहाँ समझो कि सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के उस समय के बीच के वहाँ तुलसीदास जी ने यहाँ का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा। वशिष्ठ जी ने कहा श्री भरत को कि भरत धनी मानी शहर के लोगों का और माताओं का और हमारा और सबका यही अभिप्राय है कि आज का दिन अच्छा है, तुम रात के लिए करा सब तीर्थों का जल जाकर के रखा हुआ है, सब सामग्री मौजूद है, तो सबकी इच्छा को पूर्ण करो। ये सुनकर के भरत जी रोने लगे। भरत जी ने कहा कि आप जो कुछ कहते हैं हमारे हित की बात ही कहते हुए, किंतु हमारे कुल की ये रीति नहीं कि बड़ों के रहते हुए छोटा राजगद्दी पर बैठे। और कहने लगे कि इसमें मैं मेरा हित भी नहीं देखता, मुझको राजा बनाने से मैं आप लोगों का हित है और मैं प्रजा का हित है और न कोई मेरा ही हित है। आप मुझको एक कह रहे हैं तो आप हित समझ करके कहते होंगे, किंतु मुझको इसमें मेरा हित नहीं दिखता। इसलिए आप लोगों की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं लाचार हूँ और मैं बड़ा पाप कर रहा हूँ जो आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पाप कर रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, एक प्रकार से कि इसके लिए मैं लाचार हूँ, मेरे से ये काम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कल ये तो प्रातः काल अपने भगवान राम को वापस जाने के लिए हम लोग चले और निश्चय कर लिया और सब जाने की तैयारी कर ली और फिर ऐसे गए। तो अब जो है समय हो गया है।